एक डाकू का वर्णन आता है और शायद आपने सुना भी होगा। वो एक खूंखार डाकू था, जोगीदास खुमान। एक रात वो अकेला सोया था और अचानक किसी के पैरों की छन छन की आवाज आती है, और जैसे ही आवाज आती है वो अपनी बंदूक ले लेता है हाथ में, जैसे कोई शत्रु आया हो। पर देखता है कि एक स्त्री है सामने, 16 श्रृंगार किए हुए उसके सम्मुख खड़ी है। तो एकदम से तो बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है, कहता है, कौन हो तुम? वो कहती है, मुझ पर बंदूक न चलाओ, मैं तुम्हारे पराक्रम और तुम्हारे शौर्य से बहुत प्रभावित हूं, और आज मैं तुम्हारे पास आई हूं क्योंकि मेरी इच्छा है कि मुझे तुम जैसा पति मिले और मैं तुमसे शादी करने आई हूं। वो कहता है, खबरदार, परंतु वो उसको बहुत सारी मीठी मीठी बातों से लुभाती है। वो उसको बहुत कोशिश करता है समझाने की, पर वो नहीं समझती। वो कहता है, हम लोग डाकू है, आज इधर कल किधर। वो कहती है, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वो कहता है, नहीं, तुम मेरी बहन जैसी हो। वो कहती है, नहीं, मैं बहन वगैरह नहीं हूं, मैं तो शादी करने आई हूं। बहुत मुश्किल से उसको समझाता है और आखिर में भेज देता है। और उसके बाद जब भी डाकू खुमान सोता है तो हमेशा 2 अंगरक्षक अपने साथ रखता है, किसी शत्रु से रक्षा करने के लिए नहीं। उसे डर शत्रु का नहीं है, किसी और बात का है। उसी के जीवन में एक दूसरी आगे घटना है कि अकेला घोड़े पर जा रहा है खेतों से। सुबह सुबह का समय है, 4 और 5 बजे का। एक कन्या वहां खेत में काम कर रही है। उसे आश्चर्य होता है, अकेली कन्या इतनी सुनसान जगह। वो पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? तो वो कन्या कहती है, उसे पता नहीं ये कौन है। वो कहती है, जहां पर मेरा भाई डाकू खुमान है, मुझे डर की क्या बात है? वो एक डाकू, परंतु धर्म भ्राता बन गया है। डाकुओं में एक धारणा होती थी, ब्रह्मचर्य। उन्हें डर शत्रुओं से नहीं था, अपने ब्रह्मचर्य भंग का था, और उसी शक्ति के आधार से वो धर्म भ्राता बन जाता है। कि एक गांव की कन्या वो कहती है कि हमें किसी से भय नहीं क्योंकि हमारा भाई डाकू खुमान है। तो एक डाकू अपने गिरोह में अपने कुछ नियमों से चलता है, क्योंकि उसे पता है जिन्होंने इस व्रत को तोड़ा उनका क्या हाल हुआ। तो एक यदि डाकू धर्म भ्राता बन सकता है, तो एक ब्रह्मा कुमार, और जिसने भगवान को जाना है और जिसने भगवान को पाया है और जिसके पास भगवान की परम शक्तियां है, वो यदि ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य धारण कर ले तो कैसी ऊर्जा और कैसी शक्ति और कैसा तेज और प्रवाह जीवन से बहेगा। तो ब्राह्मण जीवन का जो आधार स्तंभ है वो क्या है? प्योरिटी। और प्योरिटी का जो आधार स्तंभ है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अकेला प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी तो बहुत बड़ी चीज है, उसमें ढेर सारी चीजें हैं। उसका एक महत्वपूर्ण घटक ब्रह्मचर्य है। यदि ब्रह्मचर्य चला जाए तो प्योरिटी नहीं। बाकी सब हो, व्यक्ति मुरली सुन रहा है, अमृत वेला कर रहा है, सेवाएं कर रहा है, परंतु ब्रह्मचर्य बार बार खंडित हो रहा है सूक्ष्म में, संकल्प में और स्वप्न में, तो वो योगी नहीं। सुबह की साकार मुरली, संसार में भाई और बहन की गंदी दृष्टि नहीं जाती। यहां यदि जो ब्रह्मा कुमार है और यहां यदि जो ब्रह्मा कुमारी है, उनकी यदि आपस में गंदी दृष्टि है तो हजार गुना उनसे भी नीचे है। क्या हम करें जिससे ये धारणा, जैसे योग में सुना, कुमार जीवन की संपत्ति है, डोंट बिकम बैंक्रप्ट। ब्रह्मचर्य चला जाए तो कंगाल, ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए तो सबसे गरीब, और यदि ब्रह्मचर्य है तो सबसे श्रीमंत, सबसे धनवान, सबसे शक्तिशाली। इसलिए आज के दिन, आज की इस भट्टी में इसी प्रतिज्ञा को रिवाइज करना है, इसी को फिर से स्थिर करना है, शक्तिशाली बनाना है। लास्ट संडे के लास्ट संडे, अभी जो लास्ट संडे मुरली चली थी, बाबा ने कहा था चित्रशाला, प्यूरिटी की पर्सनालिटी, रियलिटी की रॉयल्टी, संबंधों की समीपता। चित्र देखे, चित्र में लाइट देखी, नीचे से ऊपर जा रही है स्पीड क्या है, नीचे से ऊपर जा रही है कलर कैसा है, नीचे से ऊपर जा रही है निरंतरता है या कहीं रुकती है। ब्रह्मचर्य अर्थात प्यूरिटी अर्थात व्यर्थ भी नहीं, बाबा ने कहा, अशुद्ध संकल्प भी नहीं, अवगुण के संकल्प भी नहीं, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति भी नहीं। तो प्यूरिटी तो बहुत बड़ा विषय है, आज हम प्यूरिटी की चर्चा नहीं करेंगे, परंतु ब्रह्मचर्य की चर्चा करेंगे। द डायनामाइट ऑफ प्यूरिटी या ब्रह्मचर्य एक्सप्लोड करता है, एक्सप्लोजन ला सकता है, इतनी प्रचंड ऊर्जा प्यूरिटी में है। द प्योरर द माइंड इजियर इट इज टू कंट्रोल। मन वश में नहीं है, कारण अपवित्र है। जितना वो प्यूरिफाई होगा उतना ही वो कंट्रोल में आएगा, उतना ही वो वश में होगा। इस मन को संपूर्ण प्योर बनाना ये लक्ष्य है। संसार में विकार ही विकार है, वासनाएं ही वासनाएं हैं, इन सब से उसको अप्रभावित रखना, श्रेष्ठ धारणाएं करना, ऐसा डायनामाइट जो कि विस्फोट करता है, ऐसी प्यूरिटी हमें अपने अंदर लानी है। तो आज हम इस प्यूरिटी की ऐसी 16 बातें देखेंगे, ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे प्यूरिटी सहज हो जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे ब्रह्मचर्य के लिए कोई संघर्ष ना रहे, सहज हो जाए। द्वापर से अब तक ऋषि मुनियों ने इसकी साधना की है, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने इसकी साधना नहीं की। योगियों ने की और पाश्चात्य जगत में वैज्ञानिकों ने भी की, जितने भी बड़े बड़े योगी महात्मा हुए हैं सबने कहीं ना कहीं इसकी साधना की। यहां तक कि जितने भी खोजे हुई है, आविष्कार हुए हैं, महान कलाकृतियां, पेंटर्स, स्कल्प्टर्स, सबने कहीं ना कहीं प्यूरिटी का पालन किया है, क्योंकि बिना प्यूरिटी के मन एकाग्र नहीं हो सकता। जितनी ज्यादा जिसकी एकाग्रता उसके लिए उसको उतनी प्यूरिटी आवश्यकता है। कोई एक खोज भी अगर करनी है उसके लिए भी बहुत ज्यादा प्यूरिटी चाहिए। इसके लिए जितने वैज्ञानिक है उनके जीवन को भी यदि स्टडी की जाए तो जो भी खोजे उन्होंने की है, शायद पूरा जीवन भर ब्रह्मचारी नहीं थे, परंतु उस खोज के पीरियड में 6 months 3 months संपूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित थे। विवेकानंद से किसी ने पूछा था, हाउ यू कुड इन्फ्लुएंस सो मेनी पीपल जस्ट बाय वन स्पीच, क्योंकि उनके सामने तो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग थे जो धर्म के ज्ञाता थे, सभी धर्मों को जानने वाले थे, और उन्होंने जो उत्तर दिया था वो था, इट इज नन ऑफ माई पावर्स बट इट वॉज सोलली द एनर्जी ऑफ ब्रह्मचर्य। आई हैव नॉट अलाउड माई माइंड टू हैव सिंगल सेक्शुअल थॉट इन माई लाइफ एंड दैट वॉज द सीक्रेट। मन काम विकार से संपूर्ण मुक्त हो जाता है, 100% प्यूरिटी, तब व्यक्ति जो बोलता है उसके बोल में एक ऊर्जा होती है, पावर होती है, और वो पावर किताबें पढ़ने से नहीं आ सकती, परंतु अखंड ब्रह्मचर्य की धारणा से आएगी, और यही ब्रह्मचर्य संपूर्ण प्यूरिटी बनता है और विस्फोट करता है। भगवान संसार में केवल एक ही काम करने आए हैं, अपवित्र को पवित्र बनाने, जो पतित है उसको पावन बनाने। पतित काम विकार के लिए कहा जाता है, क्रोधी के लिए नहीं। काला मुंह काम के लिए कहा जाता है, क्रोधी के लिए नहीं। पांचवी मंजिल से गिरना काम के लिए कहा जाता है, क्रोधी के लिए नहीं। तो इस धारणा को अपने जीवन में लाने के लिए, जिससे विस्फोट हो जाए और सारे विकार भस्म हो जाए, जैसे वो डायनामाइट होता है पहाड़ों को तोड़ने में काम आता है। अल्फ्रेड नोबल ने सबसे पहली बार इसकी खोज की थी, डायनामाइट की, और वो बहुत प्रसिद्ध हो गया, सारे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया, परंतु लोगों ने उसका गलत प्रयोग किया। फिर उसने तो खोजा था माइंस माउंटेन्स पहाड़ों को तोड़ने के लिए, पर लोगों ने उसका एक्सप्लोजिव के रूप में प्रयोग करना चालू किया और एक दूसरे को युद्ध में मारने लगे। और उसके जीवन में एक घटना है, 1888। एक दिन सुबह सुबह अखबार पढ़ते रहता है तो देखता है एक खबर छपी है, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, मौत का व्यापारी मर चुका है, और वो तो जिंदा है, उसके लिए छापी गई थी। एक्चुअली उसका भाई जो था लुडविक, उसकी डेथ हो जाती है, एक फ्रेंच न्यूज़पेपर गलती से यह छाप देता है कि नोबेल अल्फ्रेड की डेथ हो गई। और जैसे वो न्यूज़पेपर पढ़ता है यह सोचता है, क्या मेरे मरने के बाद लोग मुझे ऐसा याद करेंगे, मौत का व्यापारी मर गया है, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। और वहां से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अब तक उसने डायनामाइट की खोज की थी, बहुत पैसे कमाए थे, बहुत विस्तार किया था, परंतु जैसे ही पढ़ता है कि लोग मेरे मरने के बाद, यह तो गलती से छपी है पर ऐसी ही छपी जाएगी, तो वो सोचता है कि नहीं, और फिर पूरा परिवर्तन कर देता है जीवन को। अपनी सारी धन संपत्ति, अविवाहित रहता है, बच्चे उसके कोई है नहीं, अपनी सारी संपत्ति को एक प्राइज में कन्वर्ट कर देता है और कहता है कि हर साल ये प्राइज देना चाहिए, लोग मुझे ऐसा याद ना करें कि मैं मौत का व्यापारी था जिसने कईयों को मारा, लोग मुझे महान समझकर याद करें, इसके लिए नोबेल प्राइज में कन्वर्ट कर देता है। और तब से लेकर तो आज तक नोबेल प्राइज जो दिया जाता है उसकी याद में दिया जाता है। तो लोग उसे तो महान समझते हैं। अगर वो ये नहीं करता तो लोग उसे यही समझते, ये तो डायनामाइट खोजने वाला है जिसने कितनों को मार दिया। तो ये बात हम इसलिए भी बता रहे हैं कि लाइफ टर्निंग इवेंट हो गया जीवन में। यदि मैं अब मर जाऊं तो लोग मुझे किस रीति से याद करेंगे, यदि मैं अब चला जाऊं तो मेरा जीवन में क्या सार्थक हुआ। अभी अभी जो अव्यक्तवाणी चली शांतिवन में, पहला सेल्फ चेकिंग पॉइंट दिया था, क्या मेरा पुरुषार्थ यथार्थ है। तो प्यूरिटी एक डायनामाइट है, एक्सप्लोड करता है। तो हमें अपने जीवन में ऐसा अनब्रोकन ब्रह्मचर्य धारण करना है ताकि हम प्यूरिटी तक पहुंचे। जिसकी प्यूरिटी ब्रह्मचर्य जितना अधिक उसकी प्यूरिटी भी ज्यादा, दोनों में सूक्ष्म अंतर है। ब्रह्मचर्य का संबंध काम विकार पर विजय और प्यूरिटी का संबंध संपूर्ण निर्विकारिता, संकल्प बोल स्वप्न व्यर्थ भी नहीं निगेटिव भी नहीं, वो है प्यूरिटी। पर उस तक पहुंचने के लिए ब्रह्मचर्य है। तो आज हम देखेंगे ऐसी 16 बातें जो केवल सुननी नहीं है, सुनते ही धारण करनी है, जो केवल लिखनी नहीं है परंतु मन की डायरी में लिख देनी है ताकि कभी भूले ना। क्योंकि ये एक व्रत, ऐसा व्रत है कि जिसकी आजन्म साधना की आवश्यकता है, एक दिन दो दिन के लिए नहीं, निरंतर की साधना। तो इसको निकाल देंगे। तो इस ब्रह्मचर्य के लिए इस कुमार जीवन में ऐसी 16 चीजों की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य व्रत, इसका बहुत बहुत विस्तार शास्त्रों में भी किया हुआ है, हिंदू धर्म में किया है और बाकी सभी धर्मों में किया हुआ है। और इसकी धारणा के लिए ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे ब्रह्मचर्य पुरुषार्थ न होकर परिणाम हो। यहां तक कि एक दूसरी भी बात इससे जुड़ी है, जो लोग कोर्स करने सेंटर पर आते हैं या जिनका हम कोर्स कराते हैं उनको हम सीधा बताते हैं प्यूरिटी की बातें, वो न कहकर, क्योंकि वो इतने भारी हो जाते हैं फिर आना बंद कर देते हैं। प्यूरिटी रिजल्ट है, ब्रह्मचर्य परिणाम है कुछ और करने का। कुछ और करते रहो, अपने आप वो आएगा। नहीं तो जितने भी सप्रेशन हुआ है संसार में इसी की वजह से हुआ है, और जितने भी मेंटल हॉस्पिटल्स है उसमें जितने भी लोग भर्ती है उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक कारण यही रहा है, काम विकार, सेपरेशन ऑफ सेंसुअल डिजायर, एंड दे टर्न्ड इनटू इनसेन। इसके लिए सेपरेशन मार्ग नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। तो अभी हम देखेंगे कुछ बातें अभी देखेंगे, कुछ थोड़ा ब्रेक होगा, उसके बाद कुछ और बातें। सबसे पहली चीज जो सभी कुमारों को करना है ब्रह्मचर्य के लिए, बी फॉर बिजी कर दो अपने आप को। जो माइंड खाली बैठा है उसी में विकार के संकल्प आएंगे। जिसकी अपनी कोई दिनचर्या नहीं है फिक्स्ड, इतना बिजी कर दो कि कोई 10 मिनट ऐसा खाली ना हो जाए कि जिसमें हम बैठे और सोचने लगे कुछ और, व्यर्थ की बातें, विकार की बातें, संसार की बातें, व्यस्तता। स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा था, आप ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो, क्या आपको काम विकार नहीं सताता? उन्होंने कहा था, मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूं मेरे कमरे में कि काम विकार तो रोज ही आता है, ठक ठक करता है, आऊं क्या, पर मैं कहता हूं थोड़ी देर के बाद, अभी मैं बिजी हूं। आज सुबह की मुरली, बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने आता हूं, माया कहती है नहीं मैं तुम्हें नरक लेने जाने आती हूं। ठक ठक ठक, कौन? काम। आओ क्या? हम कहते मैं तो खाली बैठा हूं, मैं हूं और मेरा मोबाइल है, तुम आ सकती हो। और वो आके मोबाइल में घुस जाती है। इसके लिए सेट टाइम टेबल। अमृत वेला किया, उसके बाद क्या करना है? मुरली जाने के लिए अभी टाइम है, आधा घंटा पौन घंटा है, क्या करना है? एक एक मिनट, अभी अभी जो अव्यक्त वाणी चली शांतिवन में, एक सेकेंड कितने के बराबर है? एक घंटे के बराबर है। हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इधर की बातें उधर की बातें, यहां क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है, इस सेवा केंद्र में मधुबन में क्या हो रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, इसके पर्सनल जीवन में क्या हो रहा है, व्हाट इज दैट टू यू? माइंड योर ओन बिजनेस। किसके जीवन में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो स्वयं को बिजी रखते हैं वो स्वतः ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। आज सुबह की मुरली, विचार सागर मंथन रात में भी करते रहो, और रात का समय बहुत अच्छा है। हमने कई वरिष्ठ भाइयों को सुना है कहते हुए, जब यज्ञ की शुरुआत, जब मधुबन में आए थे, सेवाएं बहुत नहीं थी, तो मधुबन निवासी कुछ कुछ कहते हैं कि वो लोग कभी कभी 9 से 10, 10:30 बजे तक एकांत में छत पर टहलते हुए चिंतन करते थे, मनन करते थे। रात के सोने का पहले का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है 9 बजे सोने गए, 10 बजे सोना है, इस एक घंटे में बहुत बड़ी माया आ सकती है रात में। यदि आपके पास छत है घर पर और ये टाइम खाली है, तो सोने से पहले आधा घंटा चिंतन करो घूमते फिरते, और सीधा चिंतन से नींद करने जाओ। नहीं तो इस बीच में मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, यूट्यूब सबसे बड़ी माया है। रिलैक्सेशन, दिन भर सेवा की, दिन भर बिजी थे, दिन भर जॉब था, अभी थोड़ा खाली टाइम है तो कुछ तो करे। इस टाइम को चेंज कर दो। इस टाइम को किस में कर देना है कन्वर्ट? चिंतन टाइम, रात को सोने के पहले का। ये बातें तो हमने बहुत सुन के रखी है, बाबा को चार्ट लिखो और फिर योग करो और मुरली पढ़ो और फिर सो, पर हमें नहीं लगता है कितने लोग ये करते होंगे, बहुत कम। चिंतन, तो क्या बताया? ब्रह्मचर्य के लिए सबसे फर्स्ट थिंग, अपने आप को क्या कर दो? बिजी कर दो, कहीं पर भी हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इधर उधर की बातों में, ये वो देखने में, यहां वहां घूमने में, या दिन रात भोजन का चिंतन करने में, या केवल बिजनेस बिजनेस बिजनेस, मनी माइंडेडनेस, पागलपन। बच्चे बाप से कहते हैं, बाबा हम आपके यज्ञ की सेवा करने चाहते हैं, क्या हम लॉटरी ले? साकार मुरली, क्या उत्तर है बाबा का? बाबा को ऐसे पैसों की आवश्यकता नहीं है। बाय द स्वेट ऑफ thy brow thou shall earn thy bread, जो मेहनत का पैसा है वही यज्ञ में सफल होता है। इसके लिए वो पागलपन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन वो नहीं है जो संसार की आत्माओं का जीवन है, हम वो नहीं कर सकते जो संसार की आत्माएं कर रहे हैं। हमारा जीवन व्यस्त हो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये, या फिर आपका जो जॉब है, लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली, टीचर से मुलाकात, अपने विदेशी टीचर से मुलाकात, फॉरेन टीचर्स, अपने जॉब को लौकिक जॉब ना समझो, अलौकिक जॉब समझो। जो जॉब भी करते हो, कंपनी, बिजनेस, जो भी है, उसको क्या समझना है, ये भी बाबा की सेवा है। ऊपर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाबा की सेवा, पर ये अंदर से समझना है, इस लौकिक से अलौकिक को प्रत्यक्ष करना है, ये भी अलौकिक जॉब ही है। तो इसी में बिजी रहना है, इसके सिवा हमारा टाइम वेस्ट ना हो। फर्स्ट इज दिस। सेकंड, ब्रह्मचर्य के लिए चाहिए रीडिंग। ऐसे कितने हैं यहां पर जिनकी सारी अव्यक्तवाणियां पढ़ के हो गई 69 से लेकर अब तक? हाथ खड़ा करेंगे। 69 से अब तक की सारी अव्यक्तवाणियां 2017 तक, तो टेंशन तो आना चाहिए कि नहीं? हाँ, सार के रूप में भी पढ़ा तो भी ठीक है। एग्जाम सबने एडमिशन ली जनवरी में, कुछ लोगों ने एडमिशन मार्च में ली और एग्जाम है दिसंबर में। जिन्होंने मार्च में एडमिशन ली, वो अगर ये कहे, अगर इधर का कोई क्वेश्चन आता है यहां पे, वो कहेंगे कि हमको नहीं पता, आउट ऑफ सिलेबस है, ये कैसी परिस्थिति है, इसके बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं। ऐसा भी होता है क्या? अरे तुमने सुना नहीं क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं, क्योंकि लेट एडमिशन ली है। तो जिन्होंने लेट एडमिशन ली है उनको पीछे की पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका हल बाबा ने मुरलियों में नहीं बताया। द डीपेस्ट साइकोलॉजिकल थिंग्स आर डिस्कस्ड इन द अव्यक्त मुरलीज, जो कि ना तो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट, वेस्टर्न फिलोसोफर्स और ईस्टर्न फिलोसोफर्स, किसी ने जो बात बताई वो बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कह दिए। अब हमने पढ़ी नहीं वो दूसरी बात है, रीडिंग को बढ़ाना है। क्या क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? साकार मुरली है, अव्यक्त वाणी है, ये छोड़कर यज्ञ की बहुत सारा लिटरेचर है, मैगजीन्स है, अनुभव है, उसमें अपने आप को बिजी रखना है। स्पार्क की छोटी छोटी किताबें है, देखिए सबने, बहुत सारी सीरीज है अपनी, ऐसी दो सीरीज चालू करनी है हर एक को। एक सीरीज अमृत वेले के बाद, एक फिक्स जगह पर एक छोटी सी किताब रख देनी है। स्पार्क की छोटी छोटी कंपाइलेशन बुक्स है, जिनके पास नहीं है वो सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, और रोज अमृत वेले के बाद उतना एक पैराग्राफ पढ़ना है फिक्स्ड, जैसे बेहद का वैराग, टीचर्स, ब्राह्मण परिवार, सत्यता, धर्मराज, बहुत सारी है, ढेर सारी सीरीज है, तीव्र पुरुषार्थ। तो अपनी एक पर्सनल व्यक्तिगत सीरीज चालू करनी है, जो कि अमृत वेले के बाद पढ़ेंगे, और एक सीरीज रात के लिए, दो अलग अलग किताबें, और रोज इसको चालू करना है। क्योंकि पूरी अव्यक्तवाणियां पढ़ना शायद बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक एक मुरली 8-8 पेज की है कोई कोई, इसके लिए ये छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा लिया हुआ है कंपाइलेशन, दिस इज गुड। सो इंक्रीज रीडिंग, और रीडिंग में वैक्सीन्स, ज्ञानामृत है, वर्ल्ड रिन्यूअल है, प्यूरिटी है, बहुत सारी यज्ञ की, जगदीश भाई जी की लिखी हुई बुक्स है, इन सबको पढ़ने में अपने आप को बिजी रखना है। क्योंकि बिजी अगर नहीं रखेंगे, अपने आप को टाइम टेबल नहीं दूंगा मैं, तो मेरा बुद्धि, मेरी बुद्धि यहां वहां जाएगी। सो स्टार्ट इंक्रीज रीडिंग, अध्ययन को बढ़ाना है, अध्ययनशील। पापा कहते तुम स्टूडेंट हो, तुमको तो पढ़ाई में व्यस्त रहना है, जैसे वो पादरी एकांत में घूमते हैं और पढ़ाई करते हैं, तुम्हें भी एकांत में ऐसी पढ़ाई करनी है, जैसे वो लोग चिंतन करते हैं, तुम्हें भी चिंतन करना है, वो लोग जैसे सुबह सुबह उठते और भाषण के बारे में चिंतन करते हैं, तुम्हें भी चिंतन करना है। तो रीडिंग को बढ़ाना है, स्पिरिचुअल रीडिंग। इसके विरोध में है वर्ल्डली रीडिंग, मटेरियल रीडिंग, वल्गर रीडिंग। जैसे रीडिंग से मन शुद्ध होगा, वो सारा विकारी लिटरेचर जो है उससे मन अपवित्र होगा। तो फर्स्ट थिंग इज स्टॉप ऑल द वर्ल्डली मैगजीन्स, बुक्स एंड नॉवेल्स। आजकल जितने बुक्स संसार में, ये इस तरह के जो नॉवेल्स है, उसमें काम विकार भरा पड़ा है। इसके लिए प्योर स्पिरिचुअल रीडिंग्स, ना तो ऐसी चीजों को देखना है, ना तो ऐसी चीजों को सुनना है, ना तो पढ़ना है। एक ऐसा एक चित्र बना देना, दो हड्डियां होती है, डेंजर इलेक्ट्रिक में लिखा हुआ होता है, दो हड्डियां, 10,000 वोल्ट करंट, बैन। ये ब्राह्मण जीवन की बैन चीजें हैं, हाथ ही नहीं लगाना उनको। डू नॉट गो टू यूट्यूब विदाउट अ पर्पस। कुछ सुनना है जाओ और वापस आ जाओ बस, नहीं तो वो ब्लैक होल है, सक कर लेगा। रीडिंग। तीसरा है अमृत वेला। ऐसे कितने हैं यहां पर पिछले एक मास में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया? एक इधर उधर नहीं देखना, सब लोग सामने देखना, इधर उधर एक दूसरे को नहीं देखो, एक दिन भी मिस नहीं किया। एक दो तीन चार बस पांच, ये आधार है अमृत वेला। अमृत वेला नहीं तो सब अस्त व्यस्त दिनचर्या। सबसे पहला काम तो इसके ऊपर करना है, क्यों अमृत वेला नहीं हो रहा है, किस कारण से नहीं हो रहा है। जरूर रात में सोने में कोई गड़बड़ है, जरूर रात में किस संकल्प के साथ आत्मा सो रही है कुछ ना कुछ गलत है। क्या देख कर सो रही है, क्या सोच कर सो रही है, क्या पढ़ कर सो रही है, और कितने बजे सो रही है, और क्या खा कर सो रही है, तो अमृत वेला कैसे होगा? अमृत वेला अमृत है, वरदान है। अभी अभी जो अव्यक्तवाणी चली बाबा की शांतिवन में 15 नवंबर 2009 की 15 तारीख को जो चली, अमृत वेला बाबा क्या करते हैं, शक्ति वरदान में देते हैं, तीव्र पुरुषार्थी बन जाती है आत्मा, बांटते हैं शक्ति। क्या करते हैं बाबा, बांटते हैं। और यदि हम अमृत वेला ही मिस कर रहे हैं, अमृत वेला ही नहीं हो रहा है, बाकी सारे दिन भर कितना भी सेवा करो और कितना भी सब कुछ ज्ञान योग करो, कितना भी कोर्स कराओ सुनाओ, सब व्यर्थ, क्योंकि आत्मा की स्थिति नहीं है, आत्मा पावरफुल ही नहीं है अंदर से। बाहर से कितनी भी सेवा करो उसका क्या मोल, ये भूल रहे हम। सेवा इज द फोर्थ सब्जेक्ट, उसके पहले ज्ञान योग और धारणा है। ये छोड़कर अगर खाली सेवा में लगे हुए हैं, या सेवा को भी छोड़कर केवल लौकिक जॉब में लगे हुए हैं, तो केवल नाम के ब्रह्मा कुमार है बस। वी आर डिसीविंग आर सेल्स, सेल्फ डिसेप्शन। किसको छल रहे हैं हम? स्वयं स्वयं को धोखा ना दो, अव्यक्तवाणी है बाबा की, तो माया के धोखे से बच जाएंगे। पहले स्वयं स्वयं को धोखे से बचाओ। तो सबसे पहला अमृत वेला ठीक करना है, उसके लिए एक दूसरा काम दे रहे हैं आपको। अमृत वेला की किताब है एक छोटी सी, देखिए सबने, कल से आज से ही वो किताब ले लो। जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड करो कहीं से सॉफ्ट कॉपी, और डेली अगले वन मंथ के लिए केवल अमृत वेला की किताब एक दो बार पढ़ना है दिन में, छोटा छोटा पैराग्राफ उसमें से, बीच बीच में वो भी। पहले ये तो पता चले कि उसका महत्व क्या है। हम ये नहीं कह सकते हमने तो पढ़ ली थी फिर से पढ़ो, क्योंकि वो कंपाइलेशन है, संकलन है बाबा के महावाक्यों का अमृत वेले के महत्व के बारे में। अमृत वेला कैसे करें, अमृत वेले में नींद की समस्या क्यों है, अमृत वेला शक्तिशाली क्यों नहीं, अमृत वेला उठते तो है परंतु साधारण है, क्यों पावर का अनुभव नहीं हो रहा है अमृत वेला, क्यों अतिंद्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। जब यहां आत्मा अतिंद्रिय सुख से भर जाएगी तो क्या उसे किसी की शरीर, किसी का देह खींचेगा दिन भर, किसी का आकर्षण, कोई रिलेशन, कोई संबंध? अदरवाइज स्पिरिचुअल रिलेशंस टर्न इंटू रोमांटिक रिलेशंस। यदि पावर ही नहीं आत्मा में, फिर आधार चाहिए, सहारा चाहिए, टच चाहिए देहधारियों का। तो जिनका अमृत वेला नहीं हो रहा है, सबसे पहले इसको ठीक करना है। ये फाउंडेशन है डे का। बाबा कहते हैं अमृत वेला गाड़ी पटरी पर डाल दो, अपने आप चलती रहेगी दिन भर। कब तक दिन भर संभालोगे? पटरी पर सुबह सुबह डाल दो, ऑटोमेटिक चलती रहेगी। तो फर्स्ट फोकस ऑन अमृत वेला, वो छोटी सी किताब है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, वो किताब लेकर उसको रिवाइज करना है आज से ही। नेक्स्ट एच होली कंपनी, सत्संग, किन दोस्तों के साथ हम रहते हैं, हमारे जो दोस्त है, हमारे जो साथी है, जिनके साथ हम घूमते फिरते हैं, क्या वो योगी है, तपस्वी है या व्यर्थ वाले हैं। एक तो है जो ज्ञान में नहीं है, वो उनके साथ भी यदि हमें रहना पड़ता है तो हमारी स्थिति कैसी रहती है, या उनके रंग में हम रम जाते हैं या अपने रंग में उनको रंगाते हैं, या फिर ब्राह्मण परिवार में भी ऐसे संग करके रखा है कि जिनको ज्ञान योग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाकी सब चीजों में इंटरेस्ट है जो व्यर्थ में है। अगर उनको मुरली की कुछ बातें कहो तो एकदम एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, वो कहते हैं स्टॉप, कुछ और चर्चा करेंगे, ज्यादा ज्ञान योग उनको पसंद नहीं है बिल्कुल, मुरली सुन ली ना बस स्टॉप ना हो, उसकी बातें दिन में नहीं लाना, मुरली की मुरली में रही सुबह का सुबह। इस परिवार में भी श्रेष्ठ संग अर्थात तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं का संग, जिनको समय का भान है, जिनको ये पता है ये समय कौन सा चल रहा है। तो संग किसका हम कर रहे हैं, किताबें भी संग में आता है, क्लासेस भी संग में आता है। इसके लिए आपको एक बात कहेंगे, डेली एक क्लास सुननी है तीव्र पुरुषार्थ के विषय में, जो भी क्लास होगी वरिष्ठ भाइयों की, और उसके नोट्स निकालने हैं और उन नोट्स को बाद में रिवाइज करना है। कई लोग केवल क्लास सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते, एक एक दिन में चार चार क्लासेस, कई कई कुमार कहते हैं हमने चार चार क्लासेस एक दिन में सुनी, पर हाथ में कुछ भी नहीं, हाथ खाली है, और कोई कोई एक दूसरा ही काम करते हैं, क्लासेस का नहीं, सुनने का नहीं, उसके आगे का काम है वो फॉरवर्ड करने का, उसमें उनको बहुत खुशी होती है। क्लास आई तो क्या करेंगे उसको, फॉरवर्ड, खुद सुनेंगे नहीं, ऐसा करेंगे और आगे, बस भेजने का काम है, इधर से उधर, उधर से उधर, ढेर सारे ग्रुप्स चालू करके रखे हैं। और बस भेजने का काम है, जिसने खुद नहीं सुना उसको सुनने भेजने का भी अधिकार नहीं है, पहले खुद का कल्याण बाद में दूसरों का कल्याण। मधुबन से क्लास आती है, आगे फिर जिसके पास जाती है वो और दो को आगे, फिर उनके पास जाती है वो सोचते सेंटर की बहनों ने सुननी चाहिए, मेल आगे, उनको लगता है और किसी को सुनानी चाहिए, उधर से आगे, तो वो घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, उसमें ये बढ़ते जाते हैं और पावरफुल होती जाती है, पर सुनने वाला कोई भी नहीं है। सुनेंगे तो पांच मिनट और छोड़ देंगे, बहुत अच्छी है, सुनना जरूर, बेचारी अनाथ क्लास घूमती रहती है सोशल मीडिया पर। ये काम करने वाले भी है, इसके लिए व्यर्थ के जितने ग्रुप्स होंगे सबसे एग्जिट, व्यर्थ के जो ग्रुप चला रहे होंगे स्टॉप, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी सदगुरुवार, थॉट फॉर द डे, फ्लावर, क्यों भेजना है ये सब, ये सब टाइम वेस्ट नहीं है। सत्य इतना सस्ता नहीं है कि सोशल मीडिया में बिक जाए या मिल जाए, साधना चाहिए, तपस्या चाहिए, वैराग चाहिए। होली कंपनी, उसके बाद में मनन चिंतन चर्निंग, जो भी ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, अपने चिंतन को बढ़ाना है, खाली क्लास ही नहीं सुनते रहना है, अगर बहुत ज्यादा सुन रहे हो तो स्टॉप, अब चिंतन करना है, मुरली का एक लाइन लो, एक वाक्य लो और उसका चिंतन करो। जैसे आज की मुरली से खुशी क्या है, खुशी क्या है, गोली है, विटामिन है, इंजेक्शन है, बोला ना, अब इसको लो और इसका विस्तार करो, एकांत में चले जाओ, छत पर चिंतन करो, गार्डन में चले जाओ चिंतन करो, प्रकृति के सानिध्य में जाओ चिंतन करो। समय को चुराना है। अमृत वेले के बाद बहुत समय होता है। अमृत वेले के बाद सोने की किस किस को आदत है, हाथ खड़ा करेंगे जरा। बहुत ही बढ़िया नींद जिसको आ जाती है अमृत वेले के बाद। अमृत वेले के बाद सोना अर्थात की कमाई चट करना, वो समय चिंतन का है, मनन का है, अध्ययन का है, सोने का नहीं है। सबसे पावरफुल टाइम है वो। अभी अभी अमृत वेला की ओर सो गए, अभी अभी जो परमात्मा से अनुभव किया सब गया, फिर उठे 6 बजे। एक वो है जो अमृत वेला किया ही नहीं और सीधा 6 बजे उठे, एक वो कैटेगरी है। दूसरी है जिन्होंने अमृत वेला किया, सो गए थे, फिर 6 बजे उठे। दोनों की स्टेजेस में ज्यादा अंतर नहीं है। आंतरिक स्थिति में इसके लिए वो समय कमरा छोड़ दो और बाहर निकल जाओ और चिंतन को बढ़ाओ। मुरली पढ़ो, टॉपिक लो, टॉपिक का चिंतन करो या कोई दूसरी बात का चिंतन करो जो अच्छी लगती है। इसी का चिंतन करो कि अमृत वेले को शक्तिशाली कैसे बनाए, क्यों मेरा अमृत वेला शक्तिशाली नहीं होता है, क्यों मुझे नींद आती है और क्यों ब्रह्मचर्य खंडित होता है। इसी का चिंतन करो। राइट डाउन पॉइंट्स, रीड अव्यक्त मुरली, रीड साकार मुरली। आजकल तो सब कुछ मोबाइल पर है। पढ़ो और उसका विस्तार करो, चिंतन करो, मनन करो। जब तक मनन शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक जीवन की समस्याओं से मुक्ति नहीं होगी। चाहे मनन एक ऐसी शक्ति है कि यहां ज्ञान का मनन सीखने के बाद जो परिवार में और दिनचर्या में और ऑफिस में भी जो मुश्किलें आएगी उसका भी चिंतन कर सकेंगे, उसका भी मार्ग हम निकाल सकेंगे, क्योंकि आत्मा में पावर आ गई। इसके लिए मनन चिंतन को बढ़ाना है हर एक को। एक विधि है, जो भी क्लास सुनो सुनो, पॉज करो, राइट डाउन पॉइंट्स, पॉज राइट पॉइंट्स, पॉज राइट पॉइंट्स। क्लास पूरा हुआ उसको बंद कर दो, अभी सुनने की जरूरत नहीं। अभी ये जो 10 पॉइंट्स है उसको जेब में रख दो या मोबाइल में टाइप कर लो, नोटपैड या कहीं पर भी। और फिर ऑफिस में, दिनचर्या में, सेवा के बीच बीच में उसको खोल के देखना कि अच्छा ये बात थी, ओके। फिर थोड़ा सा उसको चिंतन करना, उसका सोचना उसके बारे में, उसमें क्या एडिशन की जा सकती है ये देखना। खाली भगत नहीं बन जाना है, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, स्वरूप। इसके लिए मनन और चिंतन। फिर है ए, एपिटाइट कंट्रोल। एपिटाइट अर्थात भूख, अर्थात भोजन। ब्रह्मचर्य एंड पैलेट कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिनको बहुत गरिष्ठ भोजन खाने की आदत है, बहुत तीखा और बहुत नमकीन और बहुत मीठा, वहां ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। योगी अर्थात संयम, योगी अर्थात कंट्रोल। जितना जो फूड में डूबा हुआ है या आसक्त है उतना ब्रह्मचर्य की धारणा कम होगी। और ब्रह्मचर्य जब टूटता है तो सबसे ज्यादा पश्चाताप होता है। चोरी करने का पश्चाताप नहीं है, झूठ बोलने का पश्चाताप नहीं है, बाकी श्रीमत टूटने का पश्चाताप इतना नहीं होगा एक ब्राह्मण सोल को, पर जितना ब्रह्मचर्य टूटने का पश्चाताप होगा सबसे ज्यादा होगा। चाहे वो छोटा सा भी हो इतना, तो पश्चाताप इतना होगा, क्योंकि ये मुख्य धारणा है, फर्स्ट प्रिंसिपल। इस प्यूरिटी के लिए ही यज्ञ में इतने हंगामे हुए, सारा यज्ञ प्यूरिटी पर खड़ा है। ब्रह्मा बाबा के पास तो कितनी बार लोग आए, उन्होंने कहा ये जो ब्रह्मचर्य प्यूरिटी को हटा दो फिर देखो कितनी भीड़ हो जाएगी यहां पर। बाबा ने कहा था मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, मुझे शेर शेरनियां चाहिए जो दहाड़ लगाए, और वो पावर केवल प्यूरिटी में है। आज की मुरली में भी है ना, वो तो कहते हैं कपास वो रह नहीं सकती, पर तुमको रह के दिखाना है, गृहस्थ में रह के पवित्र रह के दिखाओ। तो appetite control is very strongly connected to practice of brahmacharya, palate control, tongue control. जिसने रस इंद्रियों को जीता, रस की जो इंद्रिया है वह स्वतः ही जनेन्द्रियों को भी जीत लेते हैं. एंड दोज हु हैव नॉट कंट्रोल टंग, दे कैन नॉट कंट्रोल अदर सेंसेस ऑल्सो. जितना हो सके वो सिंपल हो, जितना हो सके अनन्य भाव से स्वीकार किया हुआ और भोग लगाकर स्वीकार किया हुआ. भोग कौन कौन लगाता है? वाह, बहुत सारे. अपना भोजन खुद कौन बनाते हैं? बहुत है. ये बात हमेशा हम कुमारों की भट्टी में कहते हैं कि बाबा के पास चार थालियां आई भोग के लिए. एक थाली थी सेंटर से आई, जिसमें खर्चा किसी और ने किया, सेवा दी, फिर किसी और ने जाकर परचेसिंग की, फिर किसी और बहन ने भोजन बनाया, फिर किसी और बहन ने या वही बहन ने भोग लगाया, और फिर परोसा किसी और ने या शायद वही बहन ने, और फिर खाया. ये प्रोसेस है. फिर भोग लगाया बाबा को. एक दूसरी थाली आई बाबा के घर में मधुबन से. वहां भोज पैसे किसी और ने दिए, लाया किसी और ने, उसको साफ सफाई किसी और ने, उसको बनाने वाले भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, रोटी किसी और ने और सब्जी किसी और ने, और फिर भोग लगाने वाली स्पेशल स्टाफ, भोग स्टाफ, उसने भोग लगाया. फिर परोसने वाले कोई दूसरे हैं, उसमें भी वीआईपी वाले अलग और जनरल वाले अलग, उसमें भी कुछ स्पेशल बन रहा हो तो उसका परोसने वाला, दूध वाला परोसने वाला अलग, तो ये सारा, और फिर भोग लगाने वाला अलग. तो ये थाली बाबा के पास आई. सेकेंड, तीसरी थाली गृहस्थ से आई. जो गृहिणी घर पे रहती है तो युगल ने जाकर भोज पैसे कमाए, फिर उसने जाके भोजन खरीद के सामान लाया, फिर जो माता है उसने भोजन बनाया और उसी ने शायद भोग लगाया, और फिर वो थाली बाबा के पास आई. उसने बहुत सारे काम किए युगल ने, एक साथ भोग लगाने का भी, खुद ही बनाने का. ये एक चौथी थाली बाबा के पास आई. वो आई एक कुमार के घर से, कुमार के कमरे से. वो अकेला ही है, वो अकेला कमाता है, उसने खुद पैसे कमाए, फिर उसने खुद जाकर परचेसिंग की, फिर उसने खुद आके घर पे भोजन बनाया, फिर खुद ही भोग लगाया. तो ऐसी चार थालियां बाबा के पास आई. आप बताओ सबसे पहली बाबा की नजर किस थाली पर जाएगी? तो इसी खुशी में ताली बजा दो जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं स्वनिर्भर, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस, अपने पैरों पर खुद जो खड़े हैं, और खुद का भोजन खुद बनाना बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या. पर उससे प्यूरिटी भी उतनी अधिक आएगी, बल भी आत्मा में उतना भरेगा. किसी को मांगने की जरूरत नहीं होगी, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए. तो पैलेट, एपिटाइट कंट्रोल. तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह बातें अभी देखी. अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे.